നമോ അരിയന്താണം, നമോ സിദ്ധാണം, നമോ ആയിരിയാണം, നമോ വജ്ജായാണം, നമോ ലോയി സഭ്യസാഹുളം. മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമോ ഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാദ്യോ ജയന്ധർമ്മോസ്തു മംഗളം. സർവമംഗൽ മാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവധർമാണാം ജയനം ജയതു ശാസനം. നമ ശ്രീ വർദ്ധമാനായ നിർധൂത്കലീലാത്മനെ സാലോകാനാം ത്രിലോകാനാം യദ്വിദ്യാദർപ്പണായതേ. रतनकरण सावकाचार, संध्या काल का समय है. स्वामी समंत भद्राचार्य द्वारा रचित, जिसमें ज्ञानी जीव के जो जिसे आत्मा का अनुभव हुआ, सत्य तो ये है कि पर का कोई अनुभव कर ही नहीं सकता. कहा जाता है यथार्थ नहीं है. अज्ञान के काल में भी व्यक्ति अपना ही अनुभव करता है, लेकिन मानता नहीं है. आवाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है. जड़ का कोई कैसे अनुभव कर सकता है, पर का कैसे अनुभव कर सकता है. जहां अपनी यथार्थ अनुभूति हो जाती है, ऐसी सम्यक दृष्टि जब तक अपरम पद में है. अपरम पद का अर्थ है क्योंकि पूर्ण निश्चय को प्राप्त हो जाने के बाद फिर व्यवहार से कोई लेना देना नहीं रहता. जब केला खाई लिया तो उसके छिलके को कौन सुरक्षित रखेगा, वो तो फेंकना ही शेष रहेगा. लेकिन जब तक संकिति लोक में है, वो अपरम पद में है, तब उसके बाहर में इस सम्यक्त्व के अंग कहे जाते हैं. वास्तव में सम्यक दर्शन के 8 अंग ये श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है, ये चारित्र गुण की पर्याय है. क्योंकि इस जाति का राग ज्ञानी को आता है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. उसमें पहला कहा निशंकित, जिनेन्द्र कथित तत्व व्यवस्था पर संशय नहीं होता. इदम एव, ईदृशम एव, इत्थम एव, न च अन्यथा. विश्व, विश्व की व्यवस्था, मेरा आत्म तत्व जैसा जिनेन्द्र प्रभु ने फरमाया है वैसा है. निकांक्षित अंग, धर्म करके परमाणु मात्र की वांछा नहीं करता. पूर्ण हूं तो वांछा क्यों, और वांछा है तो कैसी पूर्णता. धर्म का फल परोक्ष नहीं होता, धर्म का फल फ्यूचर में भी नहीं मिलता. क्योंकि ऐसे धर्म को कौन सेवन करेगा जिसका फल भविष्य में मिले. धर्म का फल साक्षात होता है और वर्तमान में होता है. इसलिए ज्ञानी कांक्षा नहीं करते. और तीसरा कौन सा था, दोनों अंग बोलो पहले. निशांकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सा. ज्ञानी के चित्त में विचिकित्सा का परिणाम नहीं होता, ग्लानी का परिणाम नहीं होता. धर्मी की कदाचित देह असुचि नजर आए. देह तो हर किसी की असुचि है, पवित्र तो रत्नत्र है, पवित्र तो ज्ञान स्वभाव है. इसलिए जगत के किसी मलिन पदार्थ को देखकर ज्ञानी को घृणा का भाव नहीं होता. मलिनता तो अज्ञानी कहता है, वो तो वास्तव में पदार्थ है. विश्व अत्यंत सुंदर है, तीनों लोक का चप्पा चप्पा अपने स्वभाव में केली करता है. तो जब विश्व का चप्पा चप्पा अपने स्वभाव में केली करता है तो उसमें कुछ पदार्थ सुंदर और कुछ असुंदर ये कहां से लाई? विश्व तो अद्भुत है। इसलिए ज्ञानी विचिकित्सा का परिणाम नहीं करता। विचिकित्सा कहें, ग्लानि कहें, घृणा कहें, हेट कहें, और उसको व्यवहार में संयमियों से जोड़ दिया। पर अमृतचंद्र आचार्य ने प्रसार सिद्धि उपाय की टीका में इसे पदार्थ मात्र से जोड़ा है। पदार्थ में विषमता का परिणाम नहीं आता, पूरा विश्व उसे एक सतमात्र नजर आता है। ये अच्छा ये बुरा ऐसा उसके चित्त में भाव नहीं आता। ये बहुत जीने की कला है भाई। क्या नाम है? रौनक भाई। ये ऐसा तत्व है, विश्व को दार्शनिक बनकर देखो, असंप्रक्त होकर देखो, तटस्थ होकर देखो, फिर आप देखेंगे दुख वहां होता है जहां हम जुड़ते हैं। दुख वहां होता है कि जहां हमें अफेयर होता है, अटैचमेंट होता है पदार्थ से। सत्य तो ये है, मैं पदार्थ का ज्ञाता हूं मात्र। अब ज्ञातृत्व में कौन अच्छा और कौन बुरा? फिर इससे भी ऊंचा अध्यात्म है, तो मैं तो अपने ही ज्ञाता जो है, वो जो ज्ञप्ति क्रिया है, ज्ञान क्रिया, तो ज्ञान ज्ञान को ही तो जान रहा है। अरे भैया समझ में आ रहा है? बोलो। संध्या काल का समय है, व्यक्ति स्वाध्याय सुने तो एक घंटा ऐसा लगना चाहिए कि यहां से स्नान करके गए हैं, अलौकिक स्नान। इसलिए ज्ञानी को विचिकित्सा का परिणाम नहीं आता। और चौथा अंग कल कौन सा लिया था? अमूढ़ दृष्टि, जहां मिथ्यात्व सड़ जाए और मिथ्यात्व क्रियाओं में व्यक्त होने लगे, जिसको मूर्खता कहते हैं लोक में, देखा देखी कार्य करना जगत के, वैसी मूर्खता ज्ञानी के चित्त में नहीं होती। इतना सुंदर तत्व पाया, फिर ऐसी भावना करे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है और ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। कई लोगों को ज्ञात है, पुराने लोग बैठे हैं, कोई पंच कल्याणक में आग लग गई थी गुरुदेव के समय, कहां की बात है, भावनगर की घाट को ऊपर की। हाँ, गुरुदेव के पास गए लोग, बेटे प्रॉब्लम है कुछ पैर में? लगा अच्छा कोई बात नहीं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो गुरुदेव के पास गए लोग, वो कहते गुरुदेव ये पांडाल जल के धू धू जल रहा है, कोई सरसों फेंको, मंत्रित, आप तो गुरुदेव हो, मंत्रित सरसों फेंको। बोले 22 वर्ष बाद इंद्र की बनी द्वारिका जली, इंद्र कुछ नहीं कर सका, धू धू करके द्वारिका जली है, नहीं जली। अरे ये कौन समझ में आए? ऐसा कलेजा चाहिए जैन शासन समझने वाले को कि उसका घर धू धू करके जलता रहे और ये लपटों की बैठ के पेंटिंग बनाता रहे, ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा करके, ऐसा ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, पुद्गल का कितना सुंदर परिणमन है, देखो कैसा सुंदर परिणमन है, ये कितनी सुंदर लो निकल रही है, ये तो जिस पे गुजरे वही जाने। ये जो हमारे चेहरे पर, हमारे जीवन में प्रसन्नता दिखाई देती है, ये उदयगत है। सच्ची प्रसन्नता वो होती है कि बाहर में अनंत प्रतिकूलता हो और अंदर से चेतना मुस्कुराती रहे उसकी, उसको आराधना कहते हैं। आज चलेगा अपना पांचवा अंग, बहुत अद्भुत अंग है, इसको कहा उपगुहन। क्या बोला? उपगुहन का अर्थ है ज्ञानी अपने गुण छुपाता है और दूसरे के दोष। हम उल्टा करते हैं, दूसरे के दोष व्यक्त करते हैं और अपने गुण व्यक्त करते हैं। जगत में ऐसी कौन माता होगी कि जो अपने बच्चे के दोषों को जग जाहिर करेगी? ज्ञानी ज्ञानी का परस्पर में माता जैसा वात्सल्य होता है। गोवत्स लिखा है ना, धर्मी से गोवत्स प्रीति सम, कर निज धर्म दिपावे। ज्ञानी एक धर्मी दूसरे धर्मी से ऐसा उसके चित्त में प्रेम होता है कि जैसे गाय को अपनी बछड़ी से होता है। शाम का विषय ऐसा ही है। उदाहरण बहुत साधारण होते हैं लेकिन बहुत समझने जैसे होते हैं। एक मां है, उसका पति है, बहुत निर्धन है, उसके एक बेटा है। पति और बेटा खेती करते हैं। ये सच्ची घटना है जो मैं बता रहा हूं आपको, प्रेमचंद जी ने लिखी है। प्रेमचंद का नाम सुना होगा, उपन्यासकार प्रेमचंद। और मां इतनी निर्धन कि दूसरे के घर पे बर्तन मांज कर आए, फिर अनाज मिले, फिर उसको पीसे, फिर घर में रोटी बनाए। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में अनाज नहीं। स्त्रियों को ऐसा जाति का राग होता है कि मेरे घर में पति और पुत्र आए तो भूखे ना सोए। वो खेती करके आई और आकर बोलती खाना परसो, जैसे कि धर गई थी। अब हो तो परसे, बोले अभी लाती हूं, तो कहीं एक्स्ट्रा मेहनत करके आई, फिर कहीं से 1.25 किलो आटा मांग कर लाई हाथ जोड़ के। फिर इस कथा का नाम है 2 बूंद आंसू। उसकी रोटी बनाई मोटी मोटी 8। ये हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय ऐसा ही चित्रण था उस जमाने में। और 2 रोटी खाई पति देव ने, 2 रोटी खाई पुत्र ने, फिर एक एक और ले ली। सुबह से बिचारी मेहनत कर रही है, वो उसकी हड्डी हड्डी निकल रही है, लेकिन कुछ नहीं खाया। बाद में एक और पति ने खा ली, बची 1। खुद को चक्कर आ रहे हैं। बेटा बोलता है, मां 1 रोटी और है, प्राण ही ले लेना सीधे। उसने दी, लेकिन नहीं मां आधी दे दे, हो सकता है उदय वश आधी बच गई। दोनों खाकर चले गए। उनको ये दिमाग भी नहीं था कि ये पूछे कि मां को कुछ बचा है या नहीं बचा। तो वो आधी रोटी कढ़ाई से पोंच कर खाती है, कढ़ाई में कुछ था नहीं, तो उसकी आंख से 2 बूंद आंसू के निकल के रोटी पे गिर जाते हैं। कथा का नाम रखा गया 2 बूंद आंसू। मैं ये कथा आपको नहीं सुना रहा, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। मां का इतना सुंदर परिणाम, खुद आंसू पीकर सोने वाली और अपने बेटे और पति का पेट भरने वाली मां का ऐसा सुंदर परिणाम, ये शुभ भाव है या अशुभ भाव है? मैं ये इतनी बड़ी कथा में कथा नहीं सुना रहा। ये जो परिणाम है, ये शुभ परिणाम है या अशुभ परिणाम है? ये मंद कषाय है या तीव्र कषाय है? बोलो। अभी एक मत होकर उत्तर नहीं आ रहा। ये अशुभ भाव है या शुभ भाव है? अशुभ भाव है। आपको कमाल कर रहे हैं, ये अशुभ भाव कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये अपने के लिए था। यही परिणाम साधर्मी के लिए होता, यही परिणाम संयमी के लिए होता, यही परिणाम मुनिराज के लिए होता, यही परिणाम, तो ये शुभ भाव कहलाता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पति और पुत्री सर्वस्व दिखाई देते हैं, उसे लगता है कि यही मेरा जीवन है। अरे मेरे भैया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कभी कभी हम मूल रहस्य समझ नहीं पाते और हमको ऐसा लगता है। इसलिए जैन शासन के हृदय को समझना बहुत बड़ा काम है, साधारण काम नहीं है। जैसे एक मां का प्रेम होता है बेटे के प्रति, ऐसे ही एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति प्रेम होता है। तो कौन मां ऐसी होगी जगत में कि जो बेटे के दोष जगत में कहेगी? और आप जानते हैं, किसी के दोष कह देने से दोष खत्म नहीं होती, कभी कभी दोष करने वाला निर्लज्ज भी हो जाता है। फिर ऐसे घरों में देखा होगा, कई माए अपने बच्चों को खूब कूटती हैं, धुनती हैं, मारती हैं सुधरने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे ढीट हो जाती हैं। आपने देखा होगा, आज पिताश्री सो रहे हैं, आज कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वो बात इसमें कही है उपगुहन की। दूसरा इसमें चर्चा आएगी बहुत सुंदर, आप देखना। पहले हम आचार्य श्री के ही वचन को पढ़ते हैं, 15 नंबर श्लोक में ऊपर देखिए इधर। हवे उपगुहन नामना सम्यक्तुना पंचमा अंगनी प्ररूपणा करवा वालो श्लोक कहे छे। क्या कहते हैं? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, बोलिए, बाला शक्ति जनाश्रयाम बाच्यताम यत् प्रमार्जन्ती तद्वदन्त्युपगुहनम्। आज जिनेन्द्र भगवान नो उपदेशेलो रत्नत्रय रूप मार्ग छे ते स्वतः शुद्ध छे। भगवान का बताया हुआ मार्ग शुद्ध है। पाठशाला की छोटी बच्ची आए, आगे भेज दो उनको, छोटी छोटी बच्ची है, आगे आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये सब अनंतमति इससे भी छोटी थी जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। हाँ, बचपन से संस्कार मिलते हैं। आप जानते हैं, मुसलमानों में मदरसे में ये शिक्षा दे दी जाती है कि यदि तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें भोजन मिलेगा, और यदि आपने नमाज नहीं पढ़ी तो भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा ये सब संस्कार काम आएंगे। मैं कहता हूं बाहर का हो सकता है लौकिक स्टैंडर्ड थोड़ा कम हो चलेगा, लेकिन हमें गुरुदेव मिले हैं, बहनश्री मिली है, तत्व ज्ञान मिला है, ये यदि हम इनको धरोहर देकर जाएंगे जैन शासन की, तत्व ज्ञान की, तो इससे जैन शासन जीवित रहेगा। जैन शासन, मुझे बीच में ही बात याद आई, जब गांधी बैरिस्ट्री पास करके आए थे लंदन से, तो अंग्रेजों को मालूम पड़ गया कि ये बूढ़ा व्यक्ति हमें हिलाएगा। तो उस समय तो थोड़े वो युवा थे, तो उन्होंने जानबूझकर गांधी बॉम्बे से दिल्ली ट्रेन में गई उस समय, और जैसे ही वो स्टेशन से उतरे तो उनके सर पर एक गोबर का टोकरा रखवा दिया किसी से कहकर, और उस पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। उस जमाने में गांधी जी ने कुछ नहीं बोला, तो वो चाहते ये रिएक्शन करें और इनको अरेस्ट करें। उन्होंने कुछ नहीं कहा, शांत होकर आ गए। बाद में कहीं से गुजर के जा रहे थे, कहीं से स्वतंत्रता सेनानियों की फौज, और कुछ अंग्रेज बंदूक लेकर आ गए, और वो झंडा हाथ में ले रखा, बोले झंडे को नीचे गिराओ, तो एक गोली मारी तो उसने दूसरे को झंडा थमा दिया, तीसरी गोली मारी उसने चौथे को झंडा थमा दिया। अब वो तो घबरा गए, बोले तुम कितनों को गोली मारोगे ये बताओ। एक वीर गिरे उससे पहले ही दूसरा वीर उस झंडे को उठा ले। उसी तरह पंचम काल के अंत तक जब धर्म अस्त होगा उससे पहले ही कोई ना कोई वीर उसको उठाने वाला मिल जाएगा। कभी जैन धर्म अस्त होने वाला नहीं है। उसको इन्हीं बालकों में से कोई कुंद कुंद छिपा है, कोई अकलंक छिपा है, कोई समंत भद्र छिपा है, कोई कहन गुरु छिपा है, कोई आकाश से नहीं आते महापुरुष, हमारे बीच में से ही निकलते हैं। मेरे भैया समझ में आ रहा है? निंदी आ रही है क्या? अब क्या कहते हैं? शुद्ध छे भगवान नो मार्ग, निर्दोष छे आ रत्नत्रय रूप मार्ग नी निंदा थाए तेवु कार्य अज्ञान ने लीधे के अशक्ति ने कारणे कोई ती थयू होए तो ते निंदा बगेरे ने दूर करी जिन मार्ग ने शुद्ध निर्दोष स्थापवो तेने उपगुहन कहे छे। मार्ग तो शुद्ध अच्छे है। कई लोग ये बोलते हैं कि सब बहुत लोगों को प्रश्न है कि आज विद्वान विद्वान लड़ रहे हैं, सीट सीट लड़ रहे हैं, संस्था वाले लड़ रहे हैं, तो जिन धर्म पवित्र है तो ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। अरे व्यक्ति अलग चीज है और सत्य अलग चीज है। यदि कोई उस मार्ग को न अपनाए तो मार्ग तो अशुद्ध नहीं हो जाता, मार्ग तो परम पवित्र है ना, मार्ग में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए जिसका उदार चित्त होता है, बहुत उदार चित्त, इसलिए सोल तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उसी को होता है। जिसके चित्त ऐसा प्रेम से लबालब भरा है कि तीनों लोक के प्राणी जिसके चित्त के अंदर पड़े हुए हैं, ऐसा मार्ग तो परम शुद्ध थे, पर या तो अशक्ति के कारण, असमर्थता के कारण, या किसी कर्मोदय के कारण, किसी के द्वारा जिन धर्म की बदनामी हो जाए, निंदा हो जाए, दोष लग जाए, तो ज्ञानी जन उसको उपगोहन करते हैं, डकते हैं। ये व्यवहार से संघ की चर्चा है। निश्चित ही तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि ज्ञानी अपने गुणों का गोपन करते हैं, उनको लगता है कि मेरी रत्नत्रय निधि लुट ना जाए तो जगत को नहीं बताते। जैसे कोई व्यक्ति भोग अकेले में भोगता है, ऐसी ज्ञानी अपनी स्वरूप संपदा को अकेले में भोगते हैं, जगत को नहीं बताते कि हमें सम्यक्त हो गया है, हमें अनुभव हो गया है, किसी को नहीं बताते, लुट जाएंगे वरना, जगत को पता पड़ गया तो। वो निश्चय से उपगुहन अंग कहा। यहां व्यवहार से दूसरों के दोष ढकते हैं, अपने गुण ढकते हैं, ये किसी की चर्चा नहीं। स्वयं अपने कलेजे का ऑपरेशन करके देखो, अपने चित्त को परख कर देखो, हमें दूसरे की निंदा में रस आता है क्या? दूसरा कोई शिथिल हो मार्ग से, हमें प्रसन्नता होती है क्या? और यदि ऐसा होता है तो समझना हम मार्ग च्युत हैं। मेरे भैया, ख्याल में आ रहा है नहीं आ रहा है? बच्चे बैठे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चियां भी हैं आज तो, एकदम गुड्डा गुड़िया जैसी। पहले मैं कथा सुनाता हूं आपको उपगुहन अंग वाली, फिर आगे जो कल के जो प्रश्नोत्तर थे शेष वो भी अपन लेंगे। दरअसल जैन शासन ऐसा है, यदि इसे दुनिया में लागू कर दिया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर प्रेम छा जाए, कहीं कोई आतंकवाद, कहीं कहीं लौकिक झगड़े भी समाप्त हो जाएं, ऐसी चीज है। एक स्थान था, जैसे अभी वर्तमान में देश होते हैं, ऐसा एक देश था, बच्चों ध्यानपूर्वक सुनो, उसका नाम था पाटलिपुत्र, नाम था देश का, नाम क्या नाम था? पाटलिपुत्र, जिसे जी। भक्ति का एक रतन रहा। छत्र में से आत्मा की तो नहीं मैं व्यापार हीरा चाहिए मैंने हीरा मांगा। वो पुलिस वाले कोतवाल वापस चले गए। वो जो चोर था सेठ जी के चरणों में उसकी आंखों से अश्रु धारा निकल पड़ी। मेरा प्रश्न है पूरे नगर में ये बदनामी होगी। चोरी करती है, कल को कोई यथार्थ भी आएगा तो उस पर श्रद्धा नहीं करेगा, कोई यथार्थ साधु भी आएगा तो उस पर श्रद्धा नहीं करेगा। इसलिए अपनी गलती और पाप से मिलेगा। आप जानते हैं सर्वज्ञ परमात्मा के धर्म का सेवन दिगंबर दीक्षा अंगीकार जिनेन्द्र दत्त समझ सकता है का बढ़ावा है किसी तुलसी की इससे तो जगत में दोष पाएंगे। नजर नहीं के एग्जाम्पल है भोजन मंगाकर दिखा रही है। उसको तत्व ज्ञान कहते नहीं उसमें असली गुरु और वक्ता कौन है जो अपने शिष्य के दोष को जग जाहिर ना करे और कलेजे से लगाकर उसका दोष उसे मुख छुपाते आज इस चीज का बहुत मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा है गर्व दृष्टि से समान समझ कर साधर्मी पे ही नहीं है विशेष उदाहरण आए पर दूसरे की देश कमजोरी समझो और अपने दोष को दूसरे के दोष कमजोरी समझो और अपने दोष को अपने अपराध को कमजोरी समझते हैं दूसरे की कमजोरी को अपराध समझते हैं। ऐसे संक्षिप्त विभाग में महेंद्र दत्त सिंह को मालूम पड़ा चोरी करने भेजा राजकुमार ने उसे बाद में मालूम पड़ा कि इसको तो चैतन्य हीरा मिल ऐसे शासन की गौरव की परम उत्तम है अपने चित्त को इतना बड़ा करें का प्रकट है पर्याय दृष्टि बाहर से नजर ही नहीं आती किसी दूसरे पर्याय दृष्टि अपने पर्याय का तो ज्ञान ज्ञानी करता है दूसरे की पर्याय का क्या लाभ होगा कथा का श्रवण अपन ने अभी किया। अभी कुछ प्रश्नोत्तर थे जो कल लिए थे और रह गए थे वो मैं आज आपको समय भी दे रहा हूं 5-10 मिनट का। एक ब्रेड की बात आई थी। देखो जो विषय चलता है सुबह चल रहा है अपना प्योर अध्यात्म अभी शाम को विषय ही ऐसा चल रहा है तो हमको इन विषयों से भी एलर्जी नहीं करना चाहिए। आप गुरुदेव श्री का चरणानियोग श्रावक धर्म प्रकाश पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव श्री को शिथिलाचार के कितने विरोधी थे गुरुदेव श्री पापाचार के कितने विरोधी थे गुरुदेव श्री। गुरुदेव श्री तो स्वयं श्वेतांबर से दिगंबर में आए। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि जो आपको भी नहीं मालूम। कुछ घटनाएं हमने हेमंत भाई जी से पूछी। एक बार ये राजमल पवैया आपको पता है जिनका विधान हम पढ़ रहे हैं ये गुरुदेव श्री से बहुत मिलते थे जाकर और बिल्कुल काले रंग के थे ये राजमल पवैया देखने में ऐसे लगे नहीं कि इतने महापुरुष हैं। तो गुरुदेव श्री को कोई मक्खन का प्रसंग बना था मक्खन खाने का तो राजमल पवैया जी ने गुरुदेव ने उन्हें बताया कि जैन दर्शन में मक्खन तो अवक्ष है तो तत्काल ही गुरुदेव श्री ने छोड़ दिया। ऐसा नहीं क्या और क्यों ये पवैया जी ने स्वयं मुझे बताया, ये राजमल पवैया जी ने स्वयं मुझे बताया ये घटना। अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया, तो कम से कम हम मुमुक्षु हैं तो ऐसी गंदी चीज का तो सेवन ना करें जिससे हमारे परिणाम मलिन हो। उसमें जो आज वर्तमान में सर्वाधिक जो त्रस घात की मलिन चीज है वो है पाव, ब्रेड, पिज्जा और चीज, जिसे कहती है एक चीज मिलेगी चीज जिसे कहती है, चीज में तो स्पष्ट लिखा हुआ है गोमांस की परत होती है। आप जो बाजार के वो आते हैं क्या बोलते पिज्जा, उसमें गोमांस की परत होती है। ये जो आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड पहले मैं भी खाता था, ऐसा नहीं है, मैं स्वयं खाता था और सबसे अच्छी अधिक पसंद थी मुझको। उसको कोमल करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ ब्रेड में डाला जाता है और वो उसकी वीडियो भी है मेरे पास, और वो कैंसर पैदा करती है। आज हम भाई जी के यहां भोजन करने गए शाम को, उनको मैंने वो वीडियो दिखाई थी वहां पर, उसके अंदर यूरोपीय कंट्री में उसको बैन है, मुलायम करने के लिए डाला जाता है। साथ में जो ईस्ट डालते हैं वो तो साक्षात मांस का पिंड है, उसमें दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तक जीव पैदा हो जाते हैं, यहां तक कि सूक्ष्म पंचेंद्रीय जीव भी पैदा हो जाते हैं ईस्ट के अंदर। और वो ईस्ट उस मैदा को सारी रात खाता है। ईस्ट माने क्या है, दो इंद्री तीन इंद्री जीव है तो उस मैदा को खाते हैं और फिर लार में घोल के फिर बाहर निकालते हैं, फिर खाते हैं, फिर लार में बाहर निकालते हैं, फिर खाते हैं, फिर लार से बाहर निकालते हैं, तो वो एकदम पूरा वो मुलायम हो जाता है, पूरा मुलायम हो जाता है। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। वो इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है। वास्तव में तो मेड इन मार्केट एनी थिंग्स नॉट अलाउ इन जैनिज्म। बाजार की बनी हुई जितनी मैदा की चीज है, बिस्कुट है, बेकरी है, ये सब चीजों में त्रस घात का दोष लगता है, त्रस घात का दोष। मैदा नहीं पलो, उसे तो ये नहीं पता मैदा क्या है। बच्चे को जिसका आप पाव बनता है, ब्रेड बनता है, जिससे भटूरा बनता है, ये सब नेचुरोपैथी भी इसके लिए निषेध करती है। एक ये जो द्विदल है, द्विदल कभी जैन श्रावक को छूना नहीं चाहिए। द्विदल क्या चीज है, नए लोगों को नहीं पता हो शायद, कि जिस चीज के दो टुकड़े नेचुरल हो जाते हो, जैसे दालें होती हैं, तो नेचुरली दो टुकड़े जमीन से ही होते हैं उसके अंदर से, और वो यदि दही, छाछ या दूध के संपर्क में आए, गोरस बोला है, और वो हमारी लार उसमें मिले, तो उसमें पंचेंद्री तक जीव पैदा हो जाती है। आपको विश्वास ना हो तो आप कभी दिल्ली गाजियाबाद आए, वहां पर मुर्गी पालन उद्योग है, तो वो एक कढ़ाई में बेसन डालते हैं और उसमें छाछ डाल देते हैं, इसके बाद कर्मचारियों को कहते हैं इसमें थूको, तो करीब तीन घंटे बाद इतने बड़े बड़े कीड़े पैदा हो जाते हैं, तीन घंटे में ही। और फिर उस छाछ को चलने में छानते हैं और कीड़ों को मुर्गियों को डालते हैं, और मुर्गियों की वो फेवरेट डिश कहलाती है, मुर्गी मुर्गा उसको खाते हैं। वही प्रक्रिया हमारी जवान में होती है अंदर, जो प्रक्रिया उस कढ़ाई के अंदर हुई वही प्रक्रिया पूरी की पूरी अंदर होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो, बुरा लग रहा है, बताओ तो सही देखो भैया ये जैन शासन है, जब जाग जाओ तभी सवेरा। बहुत अच्छी चीज है दुनिया में खाने की, बहुत है, आप घर में बनाइए बढ़िया से बढ़िया, इसमें क्या दिक्कत है। आप कह रहे हो जिन जिन को मैंने बताया ये सब, हमारे भाई साहब पवन जी को बताया था, उनको ब्रेड पहले बहुत पसंद था, और देवलाली में मैं बाल कक्षा ले रहा था जब मंगलायतन नहीं आया था, तब की बात है, तब वो प्रतिज्ञा लेकर गए, लेकिन वो अपने घर पे बना लेते हैं, बिना ईस्ट का आटे का बन जाता, बहुत स्वादिष्ट बनता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मुंह पे पट्टी बांधकर भूखे रहो और कुआं में कूदो ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन जैन शासन में एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया दिल्ली में, एक लड़के ने, दुनिया में फिर इतनी सुंदर चीज भगवान ने बनाई क्यों है। आप कहते हो ये खाओ और ये नहीं खाओ, तो भगवान ने ये सब चीज बनाई क्यों है? अभी तो इसे ये नहीं पता कि ये भगवान क्या है और कौन बनाता है और कौन मिटाता है, जगत में कौन मिटाए। हमने उनको एक ही उत्तर दिया, भगवान ने तो पहाड़ भी बनाए, गोबर भी बनाया है, ये कोई तर्क है क्या? भगवान ने तो सब बनाए, तो क्या गोबर खाओगे? पहाड़ के टुकड़े खाओगे क्या? भिष्टा खाओगे क्या? ये कोई तर्क है क्या कि जो जो चीज जगत में बनी है वो सब खाने के लिए है? ये कोई तर्क है क्या? ये तो कुतर्क है। इसलिए जिस चीज से किसी जीव के प्राण का घात होता हो, ज्ञानी को वो चीज खाने का भाव नहीं आता। अरे जिसने सच में स्वरूप ज्ञानी को जब खुद ज्ञायक नजर आता है तो सामने वाला भी ज्ञायक नजर आता है। मेरे भैया ख्याल में आ रहा नहीं आ रहा बोलो। बहुत बातें हैं, ये तो बहुत संक्षिप्त में। हाँ बोलो। एक बात बताओ, एक वेश्या का घर है और बहुत सुंदर घर है वो, और उस वो आपके लिए अलग रसोई बनाए वहां पर, तो उस रसोई में बैठकर खाओगे नहीं खाओगे? मुझे आप बताओ। शराब के प्याले में दूध पीना शोभा नहीं देता, भले ही वो दूध है तो भी शराब के प्याले में दूध पीना शोभा नहीं देता। उसका वातावरण दूषित होता है, वो सब चीज दूषित हो जाती है वहां पर। और फिर उस चीज का तो अनुमोदना हो ही गई, वहां जाने की अनुमोदना तो हो ही गई। बोलो हुई या नहीं हुई ऐसा? अरे हम जैन शासन जिन धर्म के सेवक हैं, अहिंसक कहलाते हैं, एक एक प्राणी मात्र में एक इंद्री को भी दिल दुखाने की बात नहीं है। यदि हम लोग ही स्वयं अहिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे और सदाचार नहीं अपनाएंगे तो हम विश्व से क्या अपेक्षा करेंगे? विश्व तो और वैसे ही गड्ढे में जा रहा है, चारों तरफ पापी पाप पापाचार हो रहा है। अरे बहनों की समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलो। ये जो फास्ट फूड चला है, फास्ट फूड ये समझ लीजिए पूरे कैंसर को जन्म दे रहा है, कैंसर को। अमिताभ बच्चन की पेप्सी पीने से और ये क्या बोलते हैं नूडल्स खाने से उसकी आंतें खराब हो गई, उसका ऑपरेशन हुआ। आपको विश्वास ना हो तो आप जाके खुद व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं डॉक्टर सागलिया, जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, दादर में रहते हैं और वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने पूरी घटना बताई। और उनकी करीब इतनी आंतें काटी गई, बाद में जोड़ी गई उसको, और इसके बाद उनका इंटरव्यू लिया गया, बोले किससे हुआ ये? तो उन्होंने बताया, वो कहते ना दो मिनट में खाओ घोलो और बनाओ, और करो क्या बोलती हो मैगी और पेप्सी। तो उन्होंने कहा कि आप फिर सबको बोल दो ना। बोले यदि मैं बोलूंगा तो मुझे 2 अरब रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि जिससे लिया है एडवर्टाइज का पैसा उसको कैसे बोल सकता है? शरीर का नाश तो है ही और हिंसा है, और परिणाम अत्यंत दूषित होते हैं, और दूषित परिणामों में शुद्धात्मा की बात नहीं सुहाती। भैया समझ में आ रहा है बोलो। और किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलिए, इस शाम का समय इसलिए रखा है। हाँ भाई जी कुछ पूछ रहे हैं बोलिए। हाँ सबको पता है वैसे तो, फिर भी आज एक दिन ले लिया है। 1 मीटर सिल्क की साड़ी में 36,000 कीड़े मकड़ी के उबाले जाते हैं। कितने? 36,000। सबकी वीडियो है, कल्पना से नहीं बोल रहा, अभी भी यही उपस्थित है मेरे इसमें फोन में और टेबलेट में। रेशम का कीड़ा होता है, उसको जिंदा उबाला जाता है, तो 6 मीटर की साड़ी में कितने हो गए? आप बहुत है, कॉटन है, बहुत अच्छी अच्छी चीज है, आप पहनिए, उसको पहनिए, वो आपके निमित्त से इतने कीड़े, तो समझ लो कितने कीड़ों की लाश कफन पहन लिया आपने। दूसरा क्या है, कपड़ों से व्यक्ति सुंदर नहीं होता, कपड़ों से सुंदर नहीं होता। भैंस को कितनी भी सुंदर साड़ी पहना दो तो वो उसका रंग बदल जाएगा क्या? बताइए। एक गाय को कोयले के डब्बे में रखो तो काली नहीं हो जाएगी, और भैंस को दूध के डब्बे में रखो तो वो गोरी नहीं हो जाएगी। नेचुरलिटी जो होती है, और वो जिसको देह जैसा मिल गया नाम कर्म के उदय से वो वैसा ही रहेगा। करोड़ों कोशिश कर ले कोई, करोड़ों कोशिश कर ले, देह तो नाम कर्म के अधीन है। वह भूधर दास जी का शतक है बड़ा प्यारा, निज रूप सजो भव कूप तजो, तुम काहे को रूप बनावते हो, चित पिंड अखंड प्रचंड जिया, तुम रत्न करंड कहावते हो। क्योंकि मेरा तो अमूर्तिक रूप है, मेरा तो चैतन्य रूप है। सीता जी ने तप किया, घोर तप किया, तो उनका रूप झलस गया। तब अयोध्या की सखी उनको जाकर पूछती है, माता कहां वो तुम्हारा रूप था जिसे देखकर रावण तुम्हें हर कर ले गया, अब तो तुम्हारा रूप झलस गया। तब सीता जी कहती है, काश ये देह का रूप पहले ऐसा हो गया होता तो इतनी बड़ी रामायण नहीं बनी होती। मेरा रूप तो चैतन्य है, इस देह को किसका रूप टिका रहता है इसमें। इसलिए ऐसी चीजों का सेवन का सोचना ही नहीं चाहिए कभी। और बोलिए, किसी को कोई आज ही दिया बस मैंने समय, ये किसी को कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं। कोई घर है भाई ऐसा, बोलो बोलो। और पुरुषों में, बहनों में, हाँ बहन जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये वास्तु शास्त्र मूलता में आता है क्या? वास्तव में ही मूलता में आता है। आप, मैं नहीं कह रहा, आप वर्तमान में जितने चारों अनियोग के ग्रंथ प्राप्त हैं आपको, चारों अनियोग के ग्रंथ, उनमें किसमें वास्तु शास्त्र लिखा है? किसी भी मूल आचार्य का मुझे वास्तु शास्त्र बता दो आप। दक्षिण दिशा अशुभ मानते हैं लोग, और दक्षिण दिशा में 1 लाख का नोट का बंडल पड़ा हो, उठाओगे नहीं उठाओगे? दक्षिण दिशा, आप नंदीश्वर दीप की पूजन कर रहे हैं तो दक्षिण में नंदीश्वर दीप, दक्षिण में भगवान है या नहीं है? अकेले नंदीश्वर दीप ही नहीं, मानसोत्तर में भी चारों दिशाओं में है, कुंडल वर्व दीप में भी चारों दिशाओं में है, रुचक वर्व दीप में भी चारों दिशाओं में, और हम सब लोग दक्षिण दिशा में ही रहते हैं। सत्य बात तो ये है, जिसके पल्ले पुण्य नहीं है उसका सभी वास्तु शास्त्र अशुभ है, और जिसके पल्ले पुण्य है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि पड़ोस में लोगों ने कभी, बस दक्षिण मुखी मकान है, इसके घर में रात को भूतों की आवाज आती है। गांव में ऐसा होता ना, कोई पड़ोसी मकान छोड़कर शहर चला गया हो, अब वो नहीं बेच रहा हो तो मोहल्ले वाले लोग क्या करते, दुष्ट लोग, उसके आगे लिख देते भूत, भूत घर, जिससे कि उसके मकान का रेट घट जाए। और साफ शमशान, इसमें जो आता है वो मर जाता है, ये भलाना ढिकाना। मैं ये कहता हूं, हमारा गृह प्रवेश होता स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, यहां विदेशों में तो कोई स्वस्तिक चिन्ह नहीं बनाता, तो सब लुट जाते होंगे। कोई बनाता है स्वस्तिक जानता है क्या कोई? सच्ची बात सुनो तो आप आश्चर्य करो, जो देश जितने ज्यादा धर्मात्मा है उतने ज्यादा निर्धन है। धर्मात्मा का अर्थ मैं शुद्धात्मा के अर्थ में नहीं कह रहा, क्रियाकांडी। आप बनाओ लिस्ट, मेरे पास सब रखिए, देखना, आप आके दिखाऊंगा आपको मैं। जो विश्व जितना ज्यादा मूढ़ है वो देश उतना ही ज्यादा गरीब है, उतना ही ज्यादा गरीब है जो देश जितना ज्यादा मूढ़ है। वह कौन स्वस्तिक बना रहा है, कौन शुभ लाभ कर रहा है? हमारा तो नया वर्ष आ गया, हमने स्वस्तिक बना दिया, उनके यहां कौन स्वस्तिक बन रहा है? नए वर्ष पर नाच रहे हैं। ये सब मानसिक सोच है हमारी, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। देखो ये मनोविज्ञान किसको कहते हैं, मान लो आपका फंक्शन हो रहा है और आपने केसरिया झंडा फहराया, अब वो केसरिया झंडा हवा से फड़क रहा है, तो हमें चूंकि अपने धर्म से प्रेम है तो हम झंडे को देख देख कर कहेंगे, देखो देखो जैन धर्म कैसा फड़क रहा है। ऐसा भाई साहब, हवा में झंडा तो काला भी फेरता है, आप काला झंडा लगाओ तो काला झंडा हवा में फेरेगा नहीं फेरेगा? बोलो, फंक्शन तो सबके सफल होते हैं, फंक्शन तो सबके सफल होते हैं, फंक्शन का धर्म से क्या संबंध है? फंक्शन की तरह होता है, धर्म तो अंदर की चीज है। इसलिए सब मानसिक कल्पना है, पूरी मानसिक कल्पना है। ऐसे विवाह शादी हो रही है,
ये हो रहा है, ऐसा कर लो, वहां कलश रख दो, वहां फलाना रख दो, वहां ढिकाना रख दो, ये कर दो, वो कर दो। सीता जी की कुंडली नहीं देखी होगी क्या वशिष्ठ ने? जिस जिस दिन से राम के घर में गई उसी दिन से कष्ट उठाई। बोलो उठाए नहीं उठाई? तीन बार बन गई, तीन बार। मर्यादा पुरुषायिक सम्यक दृष्टि के घर सुख नहीं पाया सीता ने, सारी धरती के मालिक के घर सीता ने सुख नहीं पाया, और जंगलों की खाक छानी, और जब सुख के दिन आए तब अर्जिका बन गई। तो भाई ये बाहर के जितने भी संयोग और बाहर का लौकिक सुख दुख है ये उदयाधीन है। ये मंगल सूत्र गले में डालकर दाओ, कल बताया था आपने डाला नहीं था, कौन सा? संयोग भाग्याधीन है, परिणाम योग्यता के अधीन है, और सुख दुख मोह के अधीन है। हाँ बाबूजी, पिताश्री पूछ रहे हैं प्रतिष्ठा में मुहूर्त क्यों निकालते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझना। प्रतिष्ठा में मुहूर्त, जो मुहूर्त होता है वो ये बताता है कि इन दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी, इन दिनों में कोई आपदा तो नहीं है, क्योंकि जो निमित्त ज्ञान से ये ज्ञान कर लिया जाता है कि उन दिनों में कोई अतिमारी तो नहीं है, उन दिनों में कोई महामारी तो नहीं है, क्योंकि यदि अतिमारी हुई, महामारी हुई, वर्षा हुई तो जिन धर्म में अप्रभावना होगी। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और वो भी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, तो जिन धर्म में विघ्न ना पड़े इस प्रकार बुद्धि पूर्वक अप्रभावना के दोष से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, पर उसमें मूर्ता नहीं है, मूर्ता नहीं है उसके अंदर, उसमें जिन धर्म की प्रभावना का है। और उसमें भी बहुत होता है, अच्छे अच्छे मुहूर्त निकाले और घनघोर पानी पड़े, घनघोर पानी पड़े, ऐसा हो कि वहां हुआ आप मारे इतना इतना पानी के जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आप ऐसा करके ऐसा होता है। ये लोगों की बात तो देखो, यदि प्रतिष्ठा हो रही हो और थोड़ा पानी पड़े केवल, तो लोग कहते हैं शुद्धि हो गई, इंद्र ने जल छिड़काव कर दिया, और ज्यादा पानी पड़ जाए तो कहते प्रतिष्ठाचार्य अशुद्धि मर गए अपने आप को व्यक्ति बचा लेता है। ये सब प्रकृति, प्रकृति से क्या लेना देना है, जहां एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ये साधारण बात है, इसमें ज्यादा फंसना नहीं है, ऐसा है। बोलो ये शादी ब्याह के मुहूर्त जो होते हैं ये भी 99% में कहता हूं कुंडली देखने नहीं जानते लोग 90। लातूर में भूकंप आया था, लातूर में भुज में एक ज्योतिष उन मरे लोगों के हाथ देखने गया, जो बहुत बड़े ज्योतिष होते ये प्रयोग करते रहते, सबके हाथ में 90-90 वर्ष की उम्र थी, ये काल में सब उलट पलट हो रहा है ये क्या, ना कोई व्यवस्थित कुंडली देखना जानता, ना कोई व्यवस्थित भविष्य बताना जानता, इसलिए क्यों चक्कर में पड़ना किसी के। दूसरे हमारे यहां भविष्य बताया जा सकता है पर बदला नहीं जा सकता, जैन दर्शन में क्या कहा, भविष्य बताया जा सकता है बदला नहीं जा सकता। तो जब बदला ही नहीं जा सकता तो उस भविष्य को पहले जानकर करोगे क्या, जानकर और क्यों आकुलता पैदा करते हो। और दूसरी बात ये, मैं तो वो पदार्थ हूं कि मेरे अंदर भविष्य, भूत और वर्तमान ये तीनों प्रवेश ही नहीं करते, मैं तो चैतन्य परम परमात्मा हूं, ऐसी दृष्टि हो तो ये सब मूर्ताएं समाप्त हो जाती हैं। और बोलिए कोई एनी क्वेश्चन किसी को, एक मिनट, हां एक मिनट, एक मिनट बैठे, हां हाँ आता है, कोई कोई अपवाद रूप में है, 2400 घंटा तो निमित्त ज्ञानी से पूछ के भोजन नहीं किया जा सकता, वो तो कोई विशेष प्रसंग आया, वो भी धर्म रक्षा के लिए, जैसे अंतिम निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी हुए और उन्होंने निमित्त ज्ञान से ये बताया कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, उन्होंने अकाल को दूर तो नहीं कर दिया ना, और उस अकाल पड़ने वाला है ऐसा जानकर मुनियों ने अपने संयम की रक्षा करने के लिए दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया। हां सम्य निमित्त ज्ञान भी श्रुत ज्ञान का भेद है, वो मुनिराज अपने लिए प्रयोग नहीं करते उसको, अपने लिए प्रयोग नहीं करते। कोई विशेष परिस्थिति आए और उस पर धर्म का संकट का काल हो और कोई प्रश्न पूछे और उसकी उसमें भली होनहार जाने तो वो उत्तर देते हैं, अन्यथा नहीं देते। और सुनो आप गजब की बात, अवधि ज्ञान देवों में सम्यक तुम्हें निमित्त नहीं बताया। जाति स्मरण ज्ञान को तो सम्यक तुम्हें निमित्त कहा है, लेकिन अवधि ज्ञान को सम्यक तुम्हें निमित्त नहीं कहा। अवधि ज्ञान सखियों का क्या प्रश्न है? नहीं है, घटनाएं बताता है, वो सम्यक तुम्हें निमित्त नहीं है। अवधि ज्ञान नहीं, दोनों सुअवधि भी और कुअवधि भी सम्यक्तु में निमित्त नहीं है। मन परिय ज्ञान भी सम्यक्तु में निमित्त नहीं है, क्योंकि मन परिय ज्ञान तो सम्यक ज्ञानी को ही होता है, सम्यक दर्शन होने के बाद मुनिराज को। और अवधि ज्ञान भी सम्यक्तु में निमित्त नहीं है। भाव श्रुत ज्ञान सम्यक्तु में निमित्त है, बल्कि भाव श्रुत ज्ञान ही सम्यक्त रूप होता है, ऐसा है। इसलिए इसमें कोई विशेष दम नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं, कदाचित कोई निमित्त ज्ञानी बता भी दे ऐसा कि ऐसी घटना होगी, तो उसको जानकर लाभ भी क्या है, क्योंकि बदल तो सकते नहीं है कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, नेमीनाथ ने पहले कह दिया, और शराब के निमित्त से जलेगी, और शराब को बाहर फेंक दिया गया और वही शराब बाहर सड़ गई और वही यादवों ने पी ली। बोलो आप, घटना तो वही घटी ना जो घटना था। हाँ, और बोलिए जल्दी, बस 2 मिनट और, टाइम ज्यादा हो गया, तो सुबह लेट हो जाती है। लोक का प्रश्न था तो वो तो बड़ा प्रश्न है, लोक का जानकार के लिए तो महीनों चाहिए। अनादि निधन है हमारे यहाँ लोक, किसी ने बनाया नहीं है, कोई मिटाता नहीं है। लोभ, लोभ के बारे में क्या बताएं? लोभ पाप का बाप बखाना, दयानंद राय जी ने लिखा है उसमें। अज्ञानी को अनंतानुबंधी लोभ खड़ा होता है। लोभ किसको होता है? जिसे ऐसा लगे कि इस द्रव्य से मुझे सुख मिलेगा, तो फिर वो उस पर द्रव्य को ग्रहण करने की चेष्टा करता है, वही लोभ है। जिसे ये मालूम पड़ गया कि सुख तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर ही तृप्ति है, तो उसे पर द्रव्य का लोभ क्यों सताएगा वो उसे, ऐसा है। चलो,